एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला साथी मेजबान, और आज हम एक ऐसे विषय की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। पर चिंता मत कीजिए, हमारा इरादा इसे आसान और दिलचस्प बनाना है।
और मैं हूं आपकी दूसरी साथी मेजबान। बिल्कुल, हम इसे मतलब बहुत भारी भरकम सिद्धांतों की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम जिनके नजरिए से इसे देख रहे हैं वो हैं जाने माने अर्थशास्त्री अविनाश दीक्षित। हमारे पास उनके काम पर आधारित दो स्रोत हैं, एक उनकी डिटेल्ड किताब का सार है और दूसरा उनकी एक छोटी इंट्रोडक्टरी किताब का।
तो सवाल उठता है, आज ये विषय क्यों अहम है? इसलिए क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ बड़ी कंपनियों या शेयर बाजार के बारे में नहीं है। ये इस बात को समझने का तरीका है कि हम, आप और मैं, अपने रोज के छोटे बड़े फैसले कैसे लेते हैं। क्या खरीदें, कितना खरीदें, नौकरी बदलें या नहीं, मोल भाव कैसे करें, इन सब में कहीं ना कहीं आर्थिक तर्क छिपा होता है ना?
एकदम सही कहा। ये समझने का विज्ञान है कि जब हमारी ख्वाहिशें तो बहुत है, पर साधन, चाहे वो पैसा हो या समय, वो सीमित है, तो हम चुनाव कैसे करते हैं। ये हमें सिखाता है कि तर्कसंगत तरीके से कैसे सोचा जाए। तो चलिए अविनाश दीक्षित के विचारों के साथ इस सोच के तरीके को थोड़ा खोलते हैं।
तो सबसे पहले, ये अविनाश दीक्षित हैं कौन? ये सिर्फ एक, क्या कहते हैं, किताबी प्रोफेसर नहीं है। भारतीय मूल के हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस हैं, और दुनिया की कुछ सबसे जानी मानी संस्थाओं जैसे अर्थशास्त्रीय सोसाइटी और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के फेलो भी चुने गए हैं। मतलब अपने फील्ड के दिग्गज हैं।
हाँ, और उनकी सबसे बड़ी खूबी जो उन्हें खास बनाती है वो है मुश्किल आर्थिक विचारों को, खासकर गेम थ्योरी, मतलब रणनीतिक ताऊपिंच का सिद्धांत, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे विषयों को बहुत ही साफ और असल जिंदगी से जुड़े अंदाज में समझाने की कला। उनकी कुछ किताबें जैसे थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली और द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इसीलिए बेस्ट सेलर बनी, क्योंकि वे सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों को भी रणनीति की ताकत समझने में मदद की। वो सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक पुल बनाते हैं।
बिल्कुल, उनमें गणित की सटीकता को रोजमर्रा के उदाहरणों और सहज ज्ञान से जोड़ने की कमाल की क्षमता है, इसीलिए वे माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे विषय को इतने अच्छे से समझा पाते हैं। वे इसे सिर्फ डिमांड सप्लाई के ग्राफ तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे एक सोचने के एक व्यापक तरीके की तरह पेश करते हैं जो हमारे जीवन के कई हिस्सों से जुड़ता है।
दीक्षित के काम का निचोड़ यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबरों और ग्राफ का खेल नहीं, बल्कि ये सोचने का एक नजरिया है, अ वे ऑफ थिंकिंग। ये हमें समझने में मदद करता है कि व्यक्ति, कंपनियां और यहां तक कि सरकारें भी, जब उनके पास संसाधन सीमित होते हैं, तो वो फैसले कैसे लेते हैं और फिर उन अलग अलग फैसलों का मिलकर समाज पर क्या असर पड़ता है।
हाँ, ये उस बुनियादी पहेली को सुलझाता है जिसका सामना हम सब करते हैं। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, पर जेब या समय सीमित, तो चुनाव कैसे करें? दीक्षित इसे सिर्फ कितनी चीज किस दाम पर बिकेगी तक नहीं रखते, वो इसमें जोड़ते हैं रणनीतिक दावपेच, यानी जब आपका फैसला दूसरों के फैसलों पर निर्भर करे। वो बात करते हैं बाजार की नाकामियों की, मार्केट फेलियर्स जिसे कहते हैं।
हाँ।
मतलब वो हालात जहां बाजार खुद ब खुद सही नतीजे नहीं दे पाता, और वो आधुनिक अर्थव्यवस्था की जो जटिलताएं हैं उनको भी ध्यान में रखते हैं।
उनकी एक किताब अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसका मकसद ही यही है कि अर्थशास्त्र के नाम से जो डर लगता है ना, उसे दूर किया जाए। वो दिखाते हैं कि इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा और समझने लायक है। वहीं उनकी दूसरी टेक्स्ट बुक ज्यादा गहराई में जाती है, जो छात्रों और पेशेवरों के लिए है, पर दोनों का संदेश एक ही है। आर्थिक तर्क हमारे जीवन के हर फैसले में मौजूद है, चाहे हम उसे पहचाने या ना पहचाने।
चलिए अब कुछ उन मुख्य विचारों को समझते हैं जिन पर दीक्षित जोर देते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात है कमी, स्केर्सिटी जिसे कहते हैं। इसका मतलब बहुत आसान है, दुनिया में हर चीज असीमित मात्रा में नहीं है। हमारा समय सीमित है, पैसा सीमित है, जमीन सीमित है, सब कुछ नहीं मिल सकता, और इसी कमी की वजह से हमें करना पड़ता है चुनाव, चॉइस।
हाँ,
हमें चुनना पड़ता है कि हम अपना सीमित समय या पैसा कहाँ खर्च करें।
और यहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। किसी भी चीज़ को पाने की असली कीमत सिर्फ वो नहीं है जो हमने उसके लिए चुकाया, जैसे पैसे, बल्कि वो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है जिसे हमने उस पहली चीज़ को पाने के लिए छोड़ दिया।
अच्छा,
सोचिए, अगर कोई आज शाम 2 घंटे बैठकर ये ज्ञान गोष्ठी सुन रहा है, तो इसकी अवसर लागत वो फिल्म हो सकती है जो वो देख सकता था, या दोस्तों से गपशप। वो हर फैसले की छिपी हुई कीमत है।
वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है।
और फिर आता है सीमांत विश्लेषण, मार्जिनल एनालिसिस। दीक्षित कहते कि हम ज्यादातर फैसले सब कुछ या कुछ नहीं के आधार पर नहीं लेते। हम ये नहीं सोचते कि क्या मुझे खाना खाना चाहिए या भूखा रहना चाहिए, बल्कि ये सोचते हैं कि क्या एक और रोटी खानी चाहिए।
कंपनियां सोचती हैं क्या एक और यूनिट बनाना फायदेमंद होगा। तर्कसंगत फैसले सीमांत पर होते हैं, मतलब हम किसी काम की एक और इकाई करने से होने वाले अतिरिक्त फायदे, जिसे मार्जिनल बेनिफिट कहते हैं,
हाँ, सीमांत लाभ,
उसकी तुलना उसकी अतिरिक्त लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट से करते हैं। जब तक अतिरिक्त फायदा लागत से ज्यादा या बराबर है, हम वो काम करते हैं।
अब जरा देखें कि इस आर्थिक खेल के मुख्य खिलाड़ी कौन है। एक तरफ है उपभोक्ता, कंज्यूमर, यानी हम और आप। हमारा लक्ष्य होता है अपनी संतुष्टि या उपयोगिता, यूटिलिटी जिसे कहते हैं, उसको अपने बजट के अंदर रहते हुए ज्यादा से ज्यादा करना। हमारी पसंद और हमारी जेब तय करती है कि हम क्या और कितना खरीदते हैं। यहीं से मांग, डिमांड का विचार आता है। अलग अलग कीमतों पर हम किसी चीज की कितनी मात्रा खरीदना चाहेंगे। आमतौर पर कीमत कम तो मांग ज्यादा, है ना?
हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है फर्म। फर्म यानी कंपनियां या उत्पादक। उनका लक्ष्य है मुनाफा कमाना। वे देखती हैं कि उत्पादन में लागत कितनी आ रही है और चीजें बेचकर कमाई कितनी हो रही है। यहां भी सीमांत लागत, मतलब एक और चीज बनाने की लागत, और सीमांत राजस्व, यानी एक और चीज बेचने से होने वाली कमाई, इसका हिसाब जरूरी है। जब तक एक और चीज बनाने और बेचने से मुनाफा हो रहा है, फर्म उत्पादन करती है। इससे आपूर्ति सप्लाई तय होती है। अलग अलग कीमतों पर फर्म कितना माल बेचने को तैयार है। आमतौर पर कीमत ज्यादा तो आपूर्ति ज्यादा।
और जब ये दोनों मानने वाले उपभोक्ता और बेचने वाली फर्म बाजार में मिलते हैं, तो चीजों की कीमत और मात्रा तय होती है। इसी को बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इसे अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड कहा था, कि कैसे लाखों लोगों के अपने अपने फैसले मिलकर बिना किसी ऊपर बैठे योजनाकार के बाजार को चलाते हैं और संसाधनों को वहां पहुंचाते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत या कद्र होती है। ये बाजार की एक अद्भुत क्षमता है।
लेकिन जैसा कि दीक्षित याद दिलाते हैं, असल दुनिया किताबों के आदर्श मॉडल जैसी सीधी नहीं होती। यहां होती हैं अपूर्ण बाजार संरचनाएं, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स, जैसे एकाधिकार, मोनोपोली, जहां किसी चीज का सिर्फ एक ही बेचने वाला हो तो वो अपनी मनमानी कीमत वसूल सकता है।
हाँ, बिल्कुल।
या अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, जहां गिने चुने बड़े खिलाड़ी होते हैं, जैसे भारत में टेलीकॉम कंपनियां या एयरलाइंस। यहां हर खिलाड़ी को दूसरे की चालों पर नजर रखनी पड़ती है।
हाँ, और यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि इन स्थितियों में या जब कुछ ही खिलाड़ी हो तो रणनीतिक सोच बहुत जरूरी हो जाती है। आपका अगला कदम इस पर निर्भर करता है कि आपका प्रतिद्वंद्वी क्या करेगा। यहीं पर गेम थ्योरी, रणनीतिक खेल का सिद्धांत काम आता है, जिसमें दीक्षित माहिर है। ये उन स्थितियों का अध्ययन है जहां नतीजे सिर्फ आपके फैसले पर नहीं बल्कि दूसरों के फैसलों पर भी निर्भर करते हैं।
इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डिलेमा। सोचिए, दो चोर पकड़े गए, अलग अलग कमरों में हैं।
हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में।
अगर दोनों चुप रहे तो दोनों को कम सजा मिलेगी। अगर एक ने दूसरे का नाम बता दिया और दूसरा चुप रहा, तो बताने वाला छूट जाएगा और चुप रहने वाले को भारी सजा मिलेगी। अगर दोनों ने एक दूसरे का नाम बता दिया तो दोनों को ठीक ठाक सजा मिलेगी। अब हर चोर अपने लिए सोचे तो उसे लगता है कि दूसरे का नाम बता देना ही बेहतर है, चाहे दूसरा कुछ भी करे। नतीजा, दोनों एक दूसरे का नाम बता देते हैं और दोनों को ज्यादा सजा मिलती है,
जबकि अगर दोनों चुप रहते तो कम सजा पाते।
हाँ।
ये दिखाता है कि कैसे अपनी अपनी भलाई सोचना कभी कभी सबके लिए बुरा नतीजा ला सकता है।
बिल्कुल।
और गेम थ्योरी के अलावा दीक्षित एक और बड़ी चीज पर ध्यान दिलाते हैं, बाजार की विफलताएं, मार्केट फेलियर्स। ये वो हालात हैं जहां बाजार अपने अदृश्य हाथ के बावजूद संसाधनों का सही बंटवारा नहीं कर पाता या समाज के लिए मतलब अच्छे नतीजे नहीं दे पाता। इसमें कई तरह की स्थितियां आती हैं। एक तो है बाह्यताएं, एक्सटर्नैलिटीज, जब आपके किसी काम का असर किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति पर पड़े जो उस काम में सीधे तौर पर शामिल नहीं है।
जैसे
अगर कोई फैक्ट्री प्रदूषण फैलाती है तो आसपास रहने वालों की सेहत खराब होती है। ये एक नकारात्मक बाह्यता है। फैक्ट्री मालिक या ग्राहक शायद इसकी पूरी कीमत नहीं चुका रहे।
अच्छा।
दूसरी तरफ अगर आप अपने घर के बाहर सुंदर बगीचा लगाते हैं तो पड़ोसियों को भी उसका फायदा मिलता है। ये सकारात्मक बाह्यता है। बाजार अक्सर इन बाहरी असर का हिसाब नहीं रख पाता।
समझ गया।
फिर है सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स। ये वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, जैसे सड़क की रोशनी या देश की सुरक्षा, और एक के इस्तेमाल से दूसरे के लिए वो कम नहीं होती। अब क्योंकि लोगों को बिना पैसे दिए भी इनका फायदा मिल जाता है तो कोई इनके लिए पैसा क्यों देना चाहेगा? इसे फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। नतीजा ये होता है कि बाजार ऐसी चीजें जरूरत के हिसाब से कम बनाता है।
हाँ, ये तो है। और तीसरा?
तीसरा है असमित जानकारी, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। जब लेन देन में एक पार्टी को दूसरे से ज्यादा पता हो, पुरानी कार खरीदने का सोचिए, बेचने वाले को पता है कार में क्या क्या दिक्कतें हैं, पर खरीदने वाले को ऊपर से देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है।
अरे हाँ, लेमन प्रॉब्लम जिसे कहते हैं शायद।
बिल्कुल। नतीजा, खरीदने वाला ज्यादा कीमत देने से हिचकिचाता है और अच्छी पुरानी कारें भी ठीक दाम पर नहीं बिक पाती। बीमा बाजार में भी यही होता है। आप अपनी सेहत के बारे में बीमा कंपनी से ज्यादा जानते हैं।
तो अगर हम दीक्षित के काम के मूल संदेशों को समेटें तो कुछ बातें उभर कर आती हैं। पहला और सबसे जरूरी, अर्थशास्त्र कोई विचारधारा या पार्टी लाइन नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है, एक टूल है। ये हमें सिखाता है कि विकल्पों को कैसे तौलें, लोगों को क्या चीज काम करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहन और हमारे फैसलों के नतीजे क्या हो सकते हैं।
दूसरा अहम संदेश है, प्रोत्साहन इंसेंटिव्स मायने रखते हैं। लोग चाहे वो ग्राहक हों, कर्मचारी हों या नागरिक, प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया देते हैं। अगर किसी काम को करने से फायदा होता है तो लोग उसे ज्यादा करेंगे, और अगर नुकसान होता है तो कम करेंगे। इस बात को समझना नीतियां बनाने वालों के लिए बहुत जरूरी है। हम भारत में रोज देखते हैं लोग टैक्स बचाने के लिए खास निवेश करते हैं।
हाँ हाँ।
या किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उसके नियम मानते हैं। ये सब प्रोत्साहनों का ही खेल है।
जादे, बाजार लाखों लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को कोऑर्डिनेट करने में कमाल का काम कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा, बाह्यताएं, सार्वजनिक वस्तुएं और जानकारी की कमी जैसी स्थितियों में बाजार अकेले काफी नहीं होता। तब शायद नियमों या सरकारी दखल की जरूरत पड़ सकती है। दीक्षित हमें एक बैलेंस नजरिया अपनाने को कहते हैं।
चौथा, जिंदगी सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है, यह अक्सर एक रणनीतिक खेल है। हमारे कई जरूरी फैसले इस बात पर निर्भर करते हैं कि दूसरे क्या करेंगे, और वो भी यही सोच रहे होते हैं। नौकरी के इंटरव्यू से लेकर व्यापार में मोल भाव या घर में किसी बात पर सहमति बनाने तक हमें अक्सर दूसरों की चालों का अंदाजा लगाना पड़ता है। दीक्षित की गेम थियरी हमें यही सिखाती है।
और पांचवा, सूचना यानी जानकारी आज के युग में एक बेहद कीमती संसाधन है, और ये अक्सर सबके पास बराबर नहीं होती। जब एक पक्ष के पास दूसरे से ज्यादा जानकारी होती है तो बाजार ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए विश्वास, साख यानी रेपुटेशन और पारदर्शिता इतने जरूरी हो जाते हैं। सोचिए, ऑनलाइन शॉपिंग में हम रिव्यू पर कितना भरोसा करते हैं। ये जानकारी के अंतर को पाटने की कोशिश ही तो है।
बिल्कुल। दीक्षित के काम से कुछ ऐसे बुनियादी विचार मिलते हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। पहला तो वही अवसर लागत वाला विचार। किसी भी चीज की असली लागत वो है जो आपको उसे पाने के लिए छोड़ना पड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हर चुनाव का एक वजन होता है, एक अनदेखी कीमत होती है।
दूसरा, समझदार फैसले सीमांत पर लिए जाते हैं, यानी ज्यादातर सवाल ये नहीं होता कि करें या ना करें, बल्कि ये होता है कि थोड़ा और करें या बस करें। ये हमें छोटे छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करता है, और पिछली गलतियों, संक कॉस्ट्स, पर रोते रहने से बचाता है।
वस्तुओं और जानकारी की कमी जैसी रुकावटें उसे कमजोर कर सकती हैं। ये बाजारों की ताकत और उनकी सीमाओं दोनों को पहचानने की बात है, न तो आंख बंद करके भरोसा, न ही पूरी तरह नकारना।
और चौथा, जिंदगी की कई अहम स्थितियों में आप सिर्फ ग्राहक या विक्रेता नहीं बल्कि एक खेल की खिलाड़ी हैं। आपकी सबसे अच्छी चाल इस पर निर्भर करती है कि आप दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे फैसले दूसरों पर असर डालते हैं और उनके हम पर।
तो अब सवाल ये है कि इन सब मतलब भारी भरकम लगने वाले विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम? असल में बहुत काम है। अपनी जेब का हिसाब किताब लगाने में ही देखिए। अवसर लागत का सिद्धांत हमें बड़े खर्चों जैसे नई कार लेनी है या विदेश घूमना है के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या उस पैसे से कुछ और करना ज्यादा फायदेमंद होता, जैसे घर का डाउन पेमेंट या बच्चों की पढ़ाई?
और सीमांत विश्लेषण, ये हमें छोटे छोटे फैसलों में मदद करता है। क्या आज रात ओवरटाइम करना चाहिए? अतिरिक्त कमाई क्या उस अतिरिक्त थकान और परिवार से दूर रहने की लागत के लायक है? क्या नेटफ्लिक्स का अगला एपिसोड देखना चाहिए या सो जाना बेहतर है ताकि सुबह ताजा उठ सके? ये सब सीमांत फैसले हैं।
व्यापार में तो ये सिद्धांत सीधे सीधे लागू होते हैं। किसी चीज की कीमत क्या रखें ये समझने के लिए मूल्य लोच प्राइस इलास्टिसिटी जानना जरूरी है, यानी कीमत बदलने पर मांग कितनी बदलेगी। क्या कीमत थोड़ी बढ़ाने से ग्राहक भाग जाएंगे या बने रहेंगे? गेम थ्योरी तो प्रतिस्पर्धियों की चालें समझने के लिए बनी ही है। अगर हम दाम घटाएं तो क्या सामने वाली कंपनी भी घटाएगी और क्या इससे प्राइस वॉर छिड़ जाएगा?
और जब हम सरकार की नीतियों के बारे में सुनते या पढ़ते हैं तो ये आर्थिक सोच हमें उन्हें बेहतर समझने में मदद करती है। अगर सरकार प्रदूषण पर कार्बन टैक्स लगाती है तो हम समझ सकते हैं कि ये नकारात्मक बाह्यता को ठीक करने की कोशिश है, मतलब प्रदूषण फैलाने वाले से उसकी सामाजिक लागत वसूलना।
सही।
जब स्वास्थ्य बीमा या शिक्षा पर बहस होती है तो असमित जानकारी और सार्वजनिक वस्तुओं के पहलू सामने आते हैं।
और सबसे जरूरी बात, ये हमें नीतियों के अनपेक्षित परिणामों अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने के लिए आगाह करता है। हर नीति नेक इरादे से बनती है, पर इसके कुछ ऐसे असर भी हो सकते जो सोचे नहीं गए थे। जैसे शहरों में किराए पर लगाम रेंट कंट्रोल लगाने का मकसद गरीबों को सस्ता घर दिलाना हो सकता है, पर इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि मकान मालिक घरों की मरम्मत कराना बंद कर दें या नए घर बनाना ही कम कर दें, जिससे लंबे समय में घरों की कमी और बढ़ जाए। आर्थिक सोच हमें सतह के नीचे देखने में मदद करती है।
तो अविनाश दीक्षित के माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस सफर से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि आर्थिक नजरिए से सोचना एक बहुत शक्तिशाली औजार है। ये सिर्फ पैसे या बाजार तक सीमित नहीं है, ये हमें इंसानी व्यवहार को समझने में मदद करता है कि लोग क्यों वो करते हैं जो वे करते हैं, खासकर जब उनके पास साधन सीमित हों। ये दफ्तर, घर, समाज हर जगह लागू होता है।
मेरे लिए सबसे अहम बात है बाजारों के प्रति एक संतुलित और सूक्ष्म नजरिया। वे वाकई कमाल के हैं, लाखों लोगों की जरूरतों को बिना किसी हुक्म के पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे अपने आप में परफेक्ट नहीं हैं। उनकी सफलता अच्छे नियमों, संस्थानों और उनकी स्वाभाविक कमियों जैसे बाजार विफलताएं को संभालने पर निर्भर करती है। और हाँ, आज की दुनिया में रणनीतिक सोच और जानकारी के महत्व को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी।
ये सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं है बल्कि एक व्यावहारिक हुनर है जो हमें अपनी जिंदगी में, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक, बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। ये हमें थोड़ा ज्यादा तर्कसंगत, थोड़ा ज्यादा जागरूक बना सकता है।
और श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़कर जा रहे हैं, क्या इन आर्थिक ताकतों और रणनीतिक चालों को, जो अक्सर पर्दे के पीछे काम करती हैं, थोड़ा बेहतर समझने के बाद आप दुनिया को, खबरों को या शायद अपने अगले मोल भाव को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।